एक समझदार इंसान प्रश्न पूछेगा कि ईसाई कौन है, ईसाई शब्द का मतलब क्या है। कोई बता सकता है ईसाई शब्द का मतलब? कोई बता सकता है ईसाई शब्द क्या है? आप सब लोग कौन हो? तो आप ईसाई हो तो आपको तो ईसाई शब्द का मतलब पता होना चाहिए। क्रिश्चियन, इंग्लिश में क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? हाँ जी, यीशु मसीह के बच्चे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं सिस्टर, इसमें आपको जो पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो है सो है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बस। सो इस स्थिति में मैंने ये प्रश्न पूछा है कि क्रिश्चियन कौन है, ईसाई कौन है, तो इसका सबसे बढ़िया उत्तर कौन दे सकता है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह ही बता सकते हैं ना कि क्रिश्चियन कौन है। और क्रिश्चियन शब्द पहली बार कहां और किसके लिए इस्तेमाल हुआ था पता है? क्रिश्चियन शब्द पहली बार किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? हाँ, यहूदी तो क्रिश्चियन नहीं है, आज भी नहीं है यहूदी क्रिश्चियन। क्रिश्चियन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ था और क्रिश्चियन शब्द आया कैसे इस दुनिया में? हाँ जी, पापी के लिए। चलो वचन में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन शब्द, इसका मतलब सारा संसार फिर क्रिश्चियन हुआ क्योंकि सारे तो पापी हैं, है ना? नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, अभी हमारा सीखने का समय शुरू हो गया है, हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने बुला लिया है। और सबको विनती है, आज तो नहीं लेके आए लेकिन नेक्स्ट टाइम अपनी अपनी भाषा में नोट करने के लिए अपना अपना कॉपी पेन लेके आइए, क्योंकि क्लास में जब हम जाते हैं तो कॉपी पेन होना जरूरी है ना। आप अपनी भाषा में लिखो जैसा आपको समझ आता है, हम धीरे धीरे क्लास करेंगे, कोई बात नहीं, खुला टाइम है 12 बजे तक, कोई बात नहीं। भोजन आज नहीं करना है, आज आत्मिक भोजन करना है। ठीक है, सो पहली बार जो क्रिश्चियन शब्द या ईसाई शब्द इस्तेमाल हुआ किसके लिए और कहां, ये हम वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और 26 आयत, जो फास्ट फास्ट पढ़ सकते हैं वो वचन जरा अभी फास्ट फास्ट पढ़ते जाइए। हाँ जी, चेलियां दे कर्तव्य 11 बाप दी 26 आयत पंजाबी के विच। ईसाई शब्द कदों ते किना ले इस्तेमाल किया गया सी? चेलियां दे कर्तव्य 11 दी 26, प्रेरितों के काम 11 का 26। इतना टाइम यार प्रेरितों के काम निकालने के लिए,
उसे मिला तो उसे अंतकाल
आतंकिया
आतंकाल लाया, और ऐसा हुआ कि वह एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलता और बहुतों लोगों को उपदेश देता रहा, और चेले सबसे पहले अंतकाल अंतकिया ही में मसीह कहलाए।
सो पहली बार ये जो शब्द आतंकिया नाम के शहर में किन के लिए इस्तेमाल हुआ, किन के लिए? चेलों के लिए। क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन धर्म को कोई धर्म नहीं मानते हैं कि ठीक है धर्म में शामिल हो गया, लेबल लगवा लिया क्रिश्चियन। क्रिश्चियन है सच्चा मसीही, पता कौन है? एक चेला। किसका चेला? प्रभु यीशु मसीह का चेला। So, आज से हमारे लिए क्रिश्चियन शब्द का मतलब पता चल गया। क्या है क्रिश्चियन शब्द? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? अभी प्रभु यीशु मसीह का चेला। So, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शर्तें रखी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला बनने के लिए क्या रखी, कौन कौन सी शर्तें थी, कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? पढ़िए मत्ती 16 उसका 24 और 25
यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
जी
तो अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
ठीक है, बस 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 बस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा पीछा करना चाहता है, जो मेरा चेला बनना चाहता है, जो मेरा प्रेरित बनना चाहता है, पहला काम क्या करे? अपने आप का इनकार। दूसरा काम क्या करे? क्रूस उठाए। और तीसरा उसके पीछे हो ले। मैंने उस दिन भी आपको ये वचन पढ़ाया था, लेकिन इसकी गहराई हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। ये एक आम या साधारण बात नहीं है। अभी आज तो हमने ये सोचना है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या नहीं हैं। अगर चेले हैं तो क्रिश्चियन हैं, अगर चेले नहीं हैं तो क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्योंकि क्रिश्चियन, मैंने बोला ना, कोई धर्म नहीं है। जब बस संडे चर्च जाना शुरू कर दिया, वो चीज़ नहीं है। क्रिश्चियन शब्द का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना, उसके कदमों पे चलना, उसका प्रेरित बनना। और उसकी पहली शर्त प्रभु यीशु मसीह ने बता दी है, क्या? कि अपने आप का इनकार करना है, क्रूस उठानी है और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। एक और शर्त देखिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, मत्ती 10 का 37 से लेके 39 तक। मत्ती 10 दी 37 तो लेके 39 तक।
जो माता या पिता को मुझ से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझ से अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग नहीं, और जो अपने क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं।
देखो, जो क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह का पीछे नहीं चलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ना तो उनको अपने प्रेरित मानता है और ना ही वो क्या हो सकते हैं? ईसाई हो सकते हैं, है ना? सही बात है ना? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा। ठीक है, सो ये कुछ शर्तें हैं प्रभु यीशु मसीह की। और प्रेरित जो चेला होता है वो होता है सच्चा ईसाई, सच्चा मसीही। जैसे इंडिया में रहने वाले को क्या बोलते हैं? अमेरिका में रहने वाले को? मलेशिया में रहने वाले को? तो मसीह का पीछा करने वाले, क्राइस्ट का पीछा करने वाले कौन? क्रिश्चियन, मसीह के परिवार के क्या बोलते सदस्य, वो होते हैं सच्चे मसीही। सो क्रिश्चियन शब्द का मतलब पता चल गया। मैं ऐसे धीरे धीरे जाऊंगा। ब्रदर ने आज मुझे बोला था कि आप बहुत फास्ट जाते हो, वचन भी नहीं नोट करते, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं सांस लेने के। तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मसीही कौन है। अच्छा, सारे बताओ अभी मसीही कौन है। हाँ, वो मसीह क्रिश्चियन है। मतलब कि चेला जो है वो है क्रिश्चियन, प्रेरित जो है वो है क्रिश्चियन। अच्छा भी पूछा सिस्टर, आप में से कोई बताइए कि क्या समझे अभी तक क्रिश्चियन कौन होता है? यीशु मसीह के चेले। सिंपल भाषा में यीशु मसीह का चेला है क्रिश्चियन। और चेले बनने की शर्तें क्या हैं? क्रूस, अपने आप का इनकार, अपना क्रूस और प्रभु यीशु मसीह का पीछा। और प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के कोई किसी चीज का भी प्रेम नहीं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा माँ हो, चाहे हमारी बाप हो। ठीक है ना? ये कुछ शर्तें रखी हैं प्रभु यीशु मसीह ने, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोले, ठीक है, या अपने वचनों से मुकर नहीं जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, सिस्टर अपने काम में बिजी थी, ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से रखा, चलो इसको डिस्टिंक्शन दे देते, थोड़ा माफ कर देते हैं। ऐसा कोई लॉजिक परमेश्वर या परमेश्वर के वचन में नहीं है। परमेश्वर के बारे में लिखा है वचन में, परमेश्वर जेलस रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में वो हर एक भावना है जो आप में है। परमेश्वर को गुस्सा आता है? आता है। परमेश्वर दुखी होता है? होता है। परमेश्वर उदास होता है? परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर रोता है, जो भावना आप में है वो परमेश्वर में भी है, ठीक है। सो अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस संसार में हमने देखा 300 करोड़ क्रिश्चियन हैं, वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन असली क्रिश्चियन कितने हैं, ये है प्रश्न। प्रश्न कि इस संसार में असली या सच्चे ईसाई कितने हैं, इस संसार दे विच सच्चे ईसाई किन्ने हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप भी बोलते हो क्रिश्चियन हो, तो कैसे जस्टिफाई करें कि आप सच्चे क्रिश्चियन हो या क्रिश्चियन हो। तो ये तो वचन अलग कर सकता है ना, मैं तो अलग नहीं कर सकता, मैं तो आपका न्याय नहीं कर सकता, वचन ही बता सकता है ना। तो एक सच्चा ईसाई परमेश्वर, सच्चे ईसाई जो जब परमेश्वर की आराधना करता है, उसके वचन, उसके बारे में वचन में लिखा है, एक सच्चा मसीही जो परमेश्वर की आराधना करता है किदा करता है, आप वचन दे विच पढ़ांगे, यूहन्ना 4 उदी 24 आयत, यूहन्ना 4 उसकी 24। एक सच्चा मसीही परमेश्वर की आराधना कैसे करता है,
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य वह कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है।
परमेश्वर क्या है, आत्मा, और उसकी आराधना करने वाले कैसे होने चाहिए, आत्मा। दो चीजों से परमेश्वर की आराधना की जा सकती है, आत्मा से और सच्चाई से। आत्मा से सच्चाई के द्वारा परमेश्वर की आराधना की जा सकती है, एदा की मतलब है। तुसी कितना आराधना कर, आप लोग कैसे आराधना करते हो ब्रदर, हम तो आत्मा से करते हैं, सच्चाई कहाँ है, है जी, आत्मा ही सच्चाई है। बोलो बोलो, नहीं नहीं ठीक है,
बोलना है जो बात आती है उसको बोलना,
बोलो क्योंकि तब भी सीखोगे, ठीक है सिस्टर, अभी देखेंगे। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा दो चीजों से करनी है, एक सच्चा मसीही दो चीजों से करता है, आत्मा और सच्चाई। आत्मा का क्या मतलब है, मैं इन लोगों ने जान लिया है, आत्मा का मतलब मैं 12वीं क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई का मतलब बताऊंगा, सच्चाई क्या है। अगर सिस्टर ये बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, आपको वो लगेगा कि हाँ वाकई इसमें कुछ दम है, अगर आत्मा ही सच्चाई है तो फिर एक ही शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, दो शब्द होने की क्या जरूरत थी। आपका नाम सिस्टर हीरा, सिस्टर गंगा, सिस्टर हीरा और सिस्टर गंगा, कितने लोग हैं, और दो लोगों को क्या कर रहा है, दो लोगों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, कर रहा है ना, इसमें कितने शब्द हैं, तो दो शब्दों का दो मतलब होने चाहिए ना, अगर एक ही मतलब है तो फिर दो बार क्यों लिखा गया है ना। सो आत्मा का मतलब मैं आज नहीं बताऊंगा, वो विषय है, तीन क्लास में वो कंप्लीट होगा, लेकिन सच्चाई का मतलब मैं आपको बताऊंगा, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई, बोलिए बोलिए, फ्री होके बोलिए, यहाँ पे हम सीखने आए हैं, सच्चाई क्या है। सिस्टर ने बोला आत्मा सच्चाई है या सच्चा दिल सच्चाई है, ये संसार के हिसाब से
सच्चाई परमेश्वर का
यीशु मसीह भी है सच्चाई, जीवन रात सच्चाई मैं हाँ, लेकिन आप देखेंगे हम सच्चाई का मतलब, क्योंकि बाइबल का अनुवाद बाइबल में है, बाहर से नहीं है, तो सच्चाई देखनी है ना क्या है। तो सच्चाई हमें पता चलेगी, पढ़िए वचन यूहन्ना 17 बाप की 17 आयत, ये वचन अपने दिल पे लिख लो अभी, यूहन्ना 17:17, यूहन्ना 17:17 वचन आज से हर क्लास में मैं इस्तेमाल करूंगा, 53 क्लास में, जैसे उड़ा या ए बी सी पहली क्लास से शुरू होती है, हमेशा चलती है, आज तक चल रही है, वैसे ही ये यूहन्ना 17:17 वचन है।
सत्या के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।
तेरा वचन ही क्या है?
सत्य है।
सत्य का मतलब पता चल गया, सच्चाई। सच्चाई परमेश्वर की आराधना करने दे लई, परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने जीवन में क्या विश्वास रखते हो, आत्मा क्या है, नरक के बारे में क्या जानते हो आप, परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, मसीह विरोधी क्या है, अति पवित्र विश्वास क्या है, तीन रास्ते क्या हैं, आप क्या प्रचार कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ये बहुत चीजें मायने रखती हैं। अगर ये वचन के मुताबिक नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ेगा कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, क्योंकि उसकी आराधना करने के लिए सच्चाई की जरूरत है, और सच्चाई क्या है? तेरा वचन ही सच्चाई है, तेरा वचन ही सत्य है। ठीक है, सो पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है जो सच्चाई है। लेकिन अगला प्रश्न ये उठता है, अभी सच्चे मसीही की पहचान पता लग गई, कैसे पहचान हो सकती है सच्चा मसीही, सच्चे मसीही की पहचान किया कि वो आत्मा ते सच्चाई दे द्वारा परमेश्वर दी की करदे हन। अभी सच्चाई सानू अगे हुण देखो ये वचन नू होर आपां अगे तोड़िया, और तोड़िया की उहदे विच देखिया कि उहदे विच दो शब्द इस्तेमाल होए, आत्मा ते सच्चाई। सच्चाई की है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दे वचन दे द्वारा ही परमेश्वर दी आराधना, परमेश्वर दी महिमा की जा सकती है। हुण मैं दो क्वेश्चन होर पुछांगा तुहानू कि अज असी किन्ने क सीरियस हां बाइबल का ज्ञान प्राप्त करन दे लई। और दूसरा प्रश्न है कि जो असी अपने जीवन दे विश्वास रखते हाँ, कि वो बाइबल दे अनुसार है या नहीं? अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो फिर हम सच्चाई से दूर हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं। ठीक है, सो ये दो प्रश्न बहुत बड़े मायने रखते हैं। आज क्या है, आज के ईसाइयों का क्या है, टाइम नहीं है किसी के पास परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन सीखो ना सीखो, प्रार्थना सीख लो, बस हो गया काम, स्वर्ग की टिकट कट गई। बाइबल का ज्ञान होना प्यारे भाइयों और बहनों बहुत जरूरी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है कि अब आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या हम बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीरियस हैं या नहीं है, हो या नहीं हो, परमेश्वर के वचन को सच्चाई मानते हो या नहीं मानते हो, तो ये जो बोलेगी उस पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे? गुड। सो तो कई बार फिर ऐसा होता है, कई बोलते हैं यार मैंने बहुत बार बाइबल पढ़नी शुरू की, उत्पत्ति मैंने 10 बार पढ़ दी है, उत्पत्ति ऐसे शुरू होती है परमेश्वर ने 7 दिन में रचना की, बाद में ये होता है इब्राहिम उसका बेटा था, उसका बेटा था, ये था वो था, ऐसा था ऐसा ऐसा, चल चल के हम छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो यार कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा है। कई बोलते हैं मैंने बहुत कोशिश की समझने की लेकिन मेरे मन में बहुत प्रश्न है, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है और कोई भी मुझे संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करूं, क्या किया जाए? क्यों ना हम बाइबल के लिखने वाले से पूछें। बाइबल को लिखने वाला कौन है? दूसरा तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16। सबको समझ आ रही है या नहीं, आ रही है या नहीं? हाँ जी, बहुत छोटी सी आवाज में आ रहा है।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
सिस्टर ने पढ़ा संपूर्ण, संपूर्ण का क्या मतलब होता है? पूरा,
पूरा
पूरा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो लिखा गया है किसकी आत्मा से है? और परमेश्वर का वचन है ना। अभी धीरे इससे धीरे धीरे पढ़ना है, पढ़िए धीरे धीरे, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है, पढ़िए।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की आत्मा से है, स्टॉप। हाँ, किसके लिए?
उपदेश और समझाने।
हाँ, वेट वेट, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, आगे
सुधारने
के लिए,
धार्मिकता
की शिक्षा देने के लिए। चार चीजों के लिए है, उपदेश देने दे लई, ठीक है, समझाउण दे लई, सुधार दे लई, और धर्म दा शिक्षा देने दे लई, धर्म दा ज्ञान देने दे लई। सो संपूर्ण पवित्र शास्त्र वचन बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा से है, परमेश्वर का वचन है। तो मुझे किसने अधिकार दिया इस वचन को मैं थोड़ा कम कर दूं या थोड़ा बढ़ा दूं, या मैं परमेश्वर के आधे वचन को छोड़ दूं और आधे को पकड़ लूं? दिया परमेश्वर ने ये किसी को अधिकार, है ना। तो देखो आज संसार में क्या हो रहा है, आप देख लो, सोच लो, ये सोचना बहुत जरूरी है हमें। वो क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियां नहीं बनना है, चलो डंडा मारा और चल दिए। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है सोचने की। अगर परमेश्वर ने हमें भेड़ बकरी बनाना होता ना, तो आदम को कभी पाप करने ही नहीं देता। वो आदम को आजादी दी, ठीक है तुम्हें जो करना है तू कर, दी या नहीं दी? ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी आजादी दी है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया तो बस ठीक ही है। इसको देखो, सोचो, सोचना बहुत जरूरी है। वही समझदार मसीही है, ठीक है। और पढ़िए इब्रानियों एक, उसका एक और दो, इब्रानियों एक, एक और दो। आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप बार बार इसको सुनो। और जो बहने या भाई जो पढ़ नहीं सकते या जो डिटेल में लिख नहीं सकते, वो बार बार इसको सुन के अपनी याददाश्त में फिट कर लो। हम आप लोगों को सीडी तो आज सबके घर में होती है, सीडी बना के दे देंगे, ठीक है। पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए।
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से दुष्टों के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों ने धन से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है।
देखिए, सो पहले पुराने कहने का मतलब, पुराने नियम में परमेश्वर में अलग अलग तरीके से भविष्यवक्ताओं के द्वारा या नबियों के द्वारा वचन बोल दिया और उन्होंने लिख दिया। नए नियम में पुत्र ने बातें की और प्रेरितों ने लिख दिया, लेकिन लिखवाने वाला कौन? परमेश्वर का आत्मा। तो क्यों ना हम परमेश्वर से पूछें अपने सारे प्रश्नों और सारे जो हमें बातें समझ नहीं आई हैं, क्योंकि वही तो अपने वचन का लिखने वाला है। आप पूछ सकते हो कि क्या मैं परमेश्वर से पूछ सकता हूँ, क्या परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है? तो उसका उत्तर है हाँ। प्रभु यीशु ने बड़ा सुंदर एक वायदा दिया है। कौन सा वायदा? मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ये आत्मिक वायदा है और इसको पूरा होने की पूरी गारंटी है। लेकिन इस वायदे का आज मतलब बदल गया है। वायदे का मतलब क्या है? क्या है वायदे का मतलब आजकल? मांगो, हर एक मुश्किल का समाधान है। कोई जॉब नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। घर की कोई प्रॉब्लम है, मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और ऐसी बहुत सी बातें, आपको किसी को बाहर जाना है तो मांगो, परमेश्वर आपको बाहर पहुंचा देगा, है ना। सो ये आजकल इस वायदे का मतलब बन गया है। लेकिन ये आत्मिक वायदा है, ये धरती या शारीरिक वायदा नहीं है, ये आत्मिक वायदा है। क्योंकि धरती की चीजों के लिए परमेश्वर के वचन में इन्हीं वचनों के पहले थोड़ी देर लिखा है, परमेश्वर को तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है कि तुम्हें किस चीज की। अगर हम गिरे हुए हैं, अगर हम अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रखना जानते हैं, तो वो जो सृष्टि का सृजनहार है वो क्यों नहीं ध्यान रखेगा? उसको पता है मेरे बच्चे को कौन से टाइम पे किस चीज की क्या है जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमारा बच्चा छोटा होता है, मान लो 8वीं कक्षा में है, जब वो बाहर देखता है अमीरों के लड़कों को और वो बाइक पे आते हैं ये वो, तो हमारा बच्चा भी बोलता है ठीक है हमें भी लेके दो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं बेटा अभी सही समय। ऐसे ही परमेश्वर सही समय के अनुसार ही सही चीज देता है। ठीक है, हमें बार बार मूर्खों की तरह प्रार्थना करने नहीं, प्रार्थना दस दे 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 दे, कई बार परमेश्वर दे देता है लेकिन उसका फिर नतीजा भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, सो हम परमेश्वर से पूछना चाहिए हमें कि परमेश्वर हमें इस बात की समझ नहीं है। परमेश्वर से परमेश्वर कैसे बात करता है पता आपको? क्या आपके कमरे में आएगा, बहुत सी लाइट हो जाएगी और आपको बोलेगा रिस्टोर और पूछो आपका क्या सवाल है, ऐसे आके परमेश्वर बात करेगा? कैसे करेगा बात? आत्मा के द्वारा कैसे बात करेगा सिस्टर?
सपनों में और दर्शन
में, सपनों में ब्रदर ने बोला, दर्शन में, और यहाँ पे किसने क्या बोला? आत्मा से, और कोई बोला प्रार्थना से। परमेश्वर सिर्फ एक ही तरीके से बात करता है, अपने वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। दूसरी बातों में मत पढ़ो। जो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे रूम में बहुत प्रकाश हो गया और इतना प्रकाश हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातें करने शुरू की। एक बाइबल में वाक्य बताऊंगा, पौलुस ने दर्शन किए थे प्रभु यीशु मसीह के, जीवन भर के लिए। 3 दिन तो अंधा रहा था लेकिन जीवन भर के लिए उसकी आंख की जो ज्योति थी बहुत कमजोर हो गई थी, और जो उसकी लिखावट थी ना, ये 14 किताबें जो उसने लिखी हैं, ऐसे होता था जैसे कीड़ा काड़ा कोई भिगो के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ऐसे। इस बात का मैं प्रूफ दिखाऊंगा। पत्रस क्या बोलता है कि जो लिखत है पौलुस की लिखत इतनी मुश्किल है पढ़ने और समझने के लिए, बाप रे। सो तब से उसकी आंखों पे इतना इफेक्ट हो गया, क्योंकि वो कैसी ज्योति थी, जैसे दोपहर को 12 बजे सूर्य चमकता है उससे भी ज्यादा। आजकल हमें सूरज बहुत अच्छे से पता है सूरज कैसे चमकता है, 9 बजे ही हम देख सकते हैं सूरज की तरफ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए देख लो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह लाइट के रूप में दर्शन देते हैं और कुछ भी नहीं होता। पौलुस को तो 3 दिन अंधा रहा था, ना 3 दिन कुछ खाया ना कुछ पिया, बाइबल में है ये। आजकल कुछ भी नहीं होता, हमारी आंखें ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, है ना? सिस्टर इस बात का मैं प्रश्न का उत्तर आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन आज तो आप इतना समझ लो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्तर देता है, ठीक है? और वचन भी कैसे भेजेगा, ठीक है? पढ़िए यूहन्ना 6:45। आपके प्रश्न बहुत आएंगे सिस्टर, सिर्फ आपको सब्र रखना है, क्योंकि परमेश्वर सब्र का परमेश्वर है, ठीक है? थैंक यू। सो परमेश्वर सब्र का परमेश्वर है, इतना समय हो गया पाप चलते हुए सब्र दे नाल बर्दाश्त कर रहा। सो सब्र बहुत जरूरी है मसीही जीवन दे विच। ये प्रश्न नु नोट कर लो सिस्टर, अज नोट कर लो, सही समय ते मैं इसका उत्तर दूंगा। जिसका जो भी प्रश्न है उसे नोट करते जाओ, हम उत्तर देंगे उसका। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। पढ़िए 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 यूहन्ना 6:45। और एक काम करना, जब जैसे भी जिस क्लास में आप प्रश्न नोट करते हो ना, एक आप प्रश्न की किताब बना लो। मेरा ये प्रश्न है इस क्लास में मुझे 4 प्रश्न आए जिसमें से मुझे 2 का उत्तर मिल गया, 2 अभी बाकी हैं। एक ऐसी प्रश्न बुक बना लो, प्रश्नों की कॉपी बना लो, ठीक है?
परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे
जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है उसे मेरे पास आता है।
सो परमेश्वर के सिखाए हुए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में भेजेगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर वचन की समझ वचन का ज्ञान देगा। ठीक है, जैसे मैं किसी से सीखा हुआ हूँ, जिसने मुझे सिखाया वो किसी से सीखा हुआ है, ऐसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में हमारे दिल की वफादारी के मुताबिक परमेश्वर हमको भेजता है। आज शायद हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम अच्छे दिल के लोग हैं, अच्छे दिल के, अच्छाई तो खैर हम सब में किसी में भी नहीं है क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। शायद परमेश्वर ने थोड़ी बहुत अपने हम पे कृपा की है और हमें समझा के ठीक है इनको वचन अपना ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो अंत में एक सबको एक सलाह है, सारे ईसाइयों को। वो सलाह क्या है हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 2:15। समझ आ रहा है सबको?
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो।
देखो, अपने आप को परमेश्वर के सामने पहले तो परमेश्वर को मंजूर हो वो, दूसरी बात ऐसा कार्य करने वाला बनना है जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, परमेश्वर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तीसरी बात सत्य के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल में लाना। सत्य का वचन क्या है? सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन का सही अनुवाद करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखो, अगर पता है तो बता दो, बीच वाली बात शैतान की है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश की बात नहीं है यहाँ, ट्राई करता हूँ, नहीं मुझे ऐसी इस तरीके से ज्ञान मिल जाएगा, उस तरीके से नहीं, पता तो पता, नहीं तो नहीं। इंग्लिश में लिखा है स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव अन टू गॉड। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई। परमेश्वर का वचन ऐसा पढ़ जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, ऐसा कारीगर बन जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, पढ़े और परमेश्वर के वचन का सही तरीके से अनुवाद करने वाला। ऐसा ना हो मेरे अनुवाद से बहुत से लोग गलत रास्ता या क्या बोलते हैं भरम में पड़ जाएं या किसी और विश्वास में गिर जाएं जो बाइबल शिक्षा नहीं दे रही है। तो जिन चीजों का नहीं पता है पूरी वफादारी से बोल दो परमेश्वर ये मुझे बात नहीं पता है, आप मुझे सिखाओ ताकि मैं लोगों को बता सकूं। ठीक है, बाइबल में पढ़ने के लिए बहुत 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 कुछ है। हमारी ये 50-60 साल की जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन अभी कुछ मैं ऐसे सिर्फ प्रश्न बोलूंगा, मैं ऐसे प्रश्न बोलूंगा जो आपको दिलचस्पी पैदा करेंगे, जो वाकई मन के जो वचन के भूखे हैं ना वो तो इन प्रश्नों का उत्तर हासिल करने के लिए बस आज से तड़पना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो पहला प्रश्न हम देखेंगे कि परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब क्या है, 24 घंटे या कुछ और है? मैं आज तो नहीं बताऊंगा लेकिन हम ये पढ़ लेंगे उत्पत्ति 1:5। एक दिन दे विच परमेश्वर दे अपने लिए एक दिन का मतलब किया 24 घंटे, लेकिन परमेश्वर दे लिए एक दिन का मतलब 24 घंटे या कुछ होर है, वो क्या है? सो उत्पत्ति 1:5। हम भी बोलते हैं उजाले को दिन, हम भी जब सूरज छिप जाता है तो रात बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़िए अभी। सांझ हुई मतलब शाम हुई और फिर सवेर हुई तो पहला दिन हुआ। शाम हुई, सवेर हुई ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ? 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਏ? ਸੋ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ? ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਕਾ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਮਾਫ ਕੀਜੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਭੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾ ਉੱਤਰ ਢੂੰਢਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਹੋ ਗਏ? ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਟੀਵੀ ਮੇ? ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਸੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਸੀਰੀਅਲ ਜਬ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਵੋ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੱਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਕੋ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੜੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਨਾ ਹੀ ਪੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਹਨੂਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਹਨੂਕ ਜਿਸਨੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲਤਾ ਚਲਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਤਪੱਤੀ 5:24। ਹਨੂਕ ਕੋ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਕਿਆ ਹਨੂਕ ਮਰਾ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਕੋ? ਕਹਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਾਂ ਹੈ? ਸੋ ਹਨੂਕ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਹਨੂਕ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ, ਅਭੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਭੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹਨੂਕ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ?
ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਯੋਹੰਨਾ 3:13, ਯੋਹੰਨਾ 3:13। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਇਹ ਹਨੂਕ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਚੋ, ਢੂੰਢੋ, ਢੂੰਢਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇਣਾ, ਢੂੰਢ ਪਾਓਗੇ ਤੋ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ, ਏਲੀਆ ਕੋ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਏਲੀਆ ਹਨੂਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾ? ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਸਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੋ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਕਿਆ ਹੈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ? ਸਮਝਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 2:11। ਇਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਹਮ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏਗਾ।
ਅਚਾਨਕ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ घोड़ों ने उनसे अलग अलग किया और एलिया वन टन में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया।
देखो एलिया स्वर्ग पे चढ़ गया, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा ब्रदर, क्या करे। तो स्वर्ग में चढ़ गया सिस्टर, स्वर्ग के तीन मतलब है बताऊंगा मैं, आकाश के भी तीन, वो आकाश लगा लो चाहे स्वर्ग लगा लो, इंग्लिश में एक ही शब्द है हेवन, इंग्लिश में एक ही शब्द है हेवन, पंजाबी और हिंदी में दो दो शब्द कर दिए आकाश कभी स्वर्ग। एक और बात आपको मैं आज बता दूं कि आपकी जो बाइबल है ना आपके हाथों में हिंदी और पंजाबी, इसमें बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां मतलब अनुवाद सही नहीं किया गया है। तो यहां पे अनुवाद सही नहीं होगा, मैं इंग्लिश में से दिखाऊंगा क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है और उसका क्या मतलब है, ठीक है, इंग्लिश से अच्छे से समझ आता है। सो फिर इंग्लिश में सिस्टर हेवन ही लिखा है, स्वर्ग ही लिखा है हेवन, लेकिन कौन सा हेवन वो देखेंगे आने वाले समय में। प्रश्न, मैंने बोला ना जब तक मैं वो दिलचस्पी नहीं पैदा करूंगा तब तक आप बोलोगे चलो वैसी ही पढ़ाई होती है जैसी हम संडे करते हैं, कुछ फर्क तो होना चाहिए ना, तभी तो आप फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके तैयार होके आया करोगे ना, है ना। चलो ये ऐसे प्रश्न है जो शायद आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा कि हमें उत्तर जानना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए या ईसाई लोग क्या मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले कौन आएगा, एलिया बोलते हैं ना, पहले प्रभु यीशु मसीह से एलिया प्रकट होगा फिर प्रभु यीशु मसीह आएगा। तो एलिया कहाँ गया, स्वर्ग में तो नहीं गया, ये मैं बात 100% गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि किसने बोली है, यीशु मसीह ने, जो सच्चाई है। मैं और किसी पे बात नहीं करता, कोई क्या बोल रहा है मैं नहीं विश्वास करता, मैं तो सिर्फ बाइबल पे विश्वास करता हूँ। चलो ये एक बात है। एक और बात, अभी अगर मैं आपको बोलूँ सिस्टर आपको प्रचार करना है तो आप क्या प्रचार करोगे, प्रचार करके बताओ, बताओ कुछ तो बोलो। संसारिक गल्लां दा बाइबल दे नाल कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं, संसारिक बातों को तो छोड़ ही दीजिए, संसारिक अभी छोड़ दो, अभी हमें सिर्फ बाइबल वाले बनना है। अगर आपको कोई बोले ब्रदर अरुण कौन सा प्रचार करना है तो किससे सीखे प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार क्या करना शुरू किया था, मत्ती 9 का 35। और प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रचार प्रेरितों को भी करने के लिए बोला, बोला या नहीं बोला, कौन सा राज दा खुशखबरी, राज दी खुशखबरी या राज्य का सुसमाचार का प्रचार। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो उसने ये प्रचार किया, और यही प्रचार उसने करने को बोला किसको, किसको, प्रेरितों को, क्रिश्चियनों को, ईसाइयों को, क्योंकि प्रेरित जो चेले हैं वही तो क्या है, चेले क्या है, चेले ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। पढ़िए 10 का 7, मत्ती 10 का 7। सो प्रभु यीशु मसीह ने तो ये प्रचार करने के लिए बोला है कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ चुका है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इस राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कहा, करते हो तुम लोग प्रार्थना, की कभी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के लिए की, वो प्रार्थना याद है ना, ए हमारे बाप जो तू आसमान पे है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह कहा पूरी होती है वैसी। इसको कभी गौर से सोचा? ईसाई तो ये प्रचार करते हैं कि ईसाई ले लिए जाएंगे, बाकी लोगों को नरक में जला दिया जाएगा, कहानी खत्म। ऐसे ही है, ऐसे है या नहीं है? हाँ जी, कौन बोल रहा है? नहीं, किसने बोला नहीं? तो फिर कैसे आप बता दो अगर ऐसा नहीं है तो? लेखा लेने के बाद लेखा कैसे लिया जाएगा? हाँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। सो पर इसमें देखिए, एक गौर कीजिए, परमेश्वर का राज कहाँ आ रहा है? स्वर्ग में? कहाँ आ रहा है? सो ये राज्य क्या है? क्या ये जलंधर में आएगा? क्या ये पंजाब में आएगा? क्या ये सारी दुनिया में आएगा? क्या इंडिया में आएगा? प्रश्न, क्योंकि ये राज्य का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है प्रेरितों के लिए। तो क्या ये प्रचार आजकल आपको सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पे आएगा? और राज्य की दुख खबरी नहीं, कौन सी खबरी? तो क्या हम खुशखबरी देते हैं आपका पड़ोसी जो एक नॉन क्रिश्चियन है, उसको हम क्या खुशखबरी देते हैं? हम तो बच गए, तू जलेगा नरक में, ये खुशखबरी है? अगर ये खुशखबरी है तो मैं भी आपको यही खुशखबरी देता हूं। तो फिर ये क्या है राज्य जिसका प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने करने को बोला, जो धरती पे आएगा? कब आएगा, कैसे आएगा, कहां आएगा? किसके पास है इस प्रश्न का उत्तर? हाँ जी, है, वचन में है, वचन में है सिस्टर, ठीक है। सो ये क्या है राज्य, ये प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो प्रश्न ही बता रहा हूं। सिस्टर बोल रही है प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो, ब्रदर कुछ बता भी दो। अच्छा, एक और प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 2:4। सिस्टर आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा एक का। आपने बोला स्वर्ग लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 12:2-4, दूसरा कुरिन्थियों 12:2-4। नहीं 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 सिस्टर, दूसरा कुरिन्थियों 12, पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 12:2-4। पढ़ दो, कोई बात नहीं, पंजाबी की पढ़ दे ब्रदर।
हाँ जी, मैं एक मसीही आदमी नु जानदा हां जो 14 साल पहला उतां तीजे आसमान तक चुक लिया गया।
बड़ी बड़ी ब्रदर, आपकी बाइबल इसको बदल दो। ये देखो, पता क्या है लिखा है, मैं नहीं जानता शरीर सहत, मैं नहीं जानता शरीर रहत, एक ऐसा मसीह में मनुष्य तीसरे आकाश को उठा लिया गया। हिंदी च पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। कौन से स्वर्ग, कितने स्वर्ग लोग, किन्ने, मतलब किन्वा स्वर्ग लोग? तीसरा। ओहो, बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टर आपकी बाइबल की ट्रांसलेशन में। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए पढ़िए।
मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ।
हाँ,
जो 14 वर्ष हुए कि न जाने ये सहित न जाने भी नहीं परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ।
देखिए, तीसरा स्वर्ग, आप बोलते ना इसमें तो स्वर्ग लिखा है, बाइबल में तीन स्वर्ग है जो हम क्लास नंबर 4 में पढ़ेंगे। सो ये भी प्रश्न, यहाँ पे पौलुस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है,
पहला और दूसरा स्वर्ग कहाँ है? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। 666 का तो आपने सुना ही होगा, हॉट टॉपिक। 666 के बारे में नहीं सुना? मसीह विरोधी का नंबर है 666। 3-6 कोई बोलता है चिप दे दी जाएगी, कोई बोलता है निशान लगा दिया जाएगा, कोई बोलता है स्टैंप लग जाएगी। क्या है सच्चाई बाइबल में इसके बारे प्रश्न? इतना मैं आपको आज विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कोई आप जिससे भी आप सुनते हो ना, वैसा नहीं है। जिस दिन सुनोगे तो पूरा हिल जाओगे कि है ऐसा है। सो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे प्रिय ज्यादातर बहने हैं, तो इसलिए बहने बोलूंगा। मेरी प्रिय बहनों और जो भाई हैं, इसका इन सब का उत्तर किसमें है? बाइबल में। और जो ढूंढते हैं उनको क्या मिलता है? मिलेगा, गारंटी दी है। हम दुकान पे जाते हैं ना कोई सामान खरीदने, और बेचने वाला क्या बोलता है? गारंटी है इतने साल की, बदल दूंगा। ऐसी गारंटी प्रभु यीशु मसीह ने दी है, मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिलेगा। सो और जब मिलेगा तो क्या होगा? पढ़िए यूहन्ना 8 उसकी 32 आयत, यूहन्ना 8 की 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर दा। तुम परमेश्वर के वचन को जानोगे और परमेश्वर का वचन तुम्हें आजाद करेगा। ऐसे होते हैं अनुवाद कि जो मतलब के शब्द है उसका असली मतलब निकाल के वहां डाल के अनुवाद हो। सो प्रिय भाइयों और बहनों, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। क्या आपको ये दिलचस्प लगी? आगे बढ़ना चाहेंगे या यहीं पर रोक दें? आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहोगे? अगर हाँ तो मैं आपको कुछ विषय बोलूंगा। सबसे पहला विषय होगा हमारा बाइबल को पढ़ना और समझना कैसे है। दूसरा हमारा विषय होगा, दूसरा और तीसरा, क्रूस का रहस्य, सलीब दा की पेद है। फिर चौथा और पांचवा होगा परमेश्वर की युगों की योजना, क्योंकि परमेश्वर ने 3 युगों की योजना रखी है, पहला संसार, दूसरा संसार और तीसरा संसार। उसके बाद पढ़ेंगे हम विश्वास और अति पवित्र विश्वास। उसके बाद पढ़ेंगे ये जो राज्य आने वाला है, ठीक है? कोई बात नहीं सिस्टर, ये एक एक विषय हम करेंगे, मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं। उसके बाद हम करेंगे, आप लोगों ने कितने रास्ते सुने हैं बाइबल में? कितने रास्ते हैं? दो ही हैं, लेकिन बाइबल में 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते क्लास नंबर 9 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी? बुराई क्यों चल रही है इस वक्त? इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं रोक सकता परमेश्वर? रोक रहा परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने इसको आज्ञा दे दी है कि चलो होने दो जो हो रहा है? पुराने नियम का क्या मतलब है? आत्मा का भाग्य 1 और 2, अमीर और लाजर की कहानी का असली अनुवाद क्या है? नरक के बारे में सच्चाई क्या है? चर्च क्या है? क्या ये चर्च है या चर्च का मतलब कुछ और है? ठीक है, और चर्च के 3 भाग्य, ट्रिनिटी, पवित्र पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में सच्चाई क्या है? अदन के बाग से निकलती 4 नदियां, उसका मतलब क्या है? 24 एल्डर, 24 श्वेत बैठे हैं, प्रकाशित वाक्य में बोला है 24 जो श्वेत बैठे हुए हैं, एक एक उठ के दंडवत कर रहा है सिंहासन के सामने, इसका क्या मतलब है? भविष्यवाणी को कैसे समझना है, उसकी चाबियां, एक भविष्यवाणी का अनुवाद कैसे करना है? दानियल ने भविष्यवाणी की, हेजकेल ने भविष्यवाणी की, बहुत से नबियों ने भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी को समझना कैसे है? क्योंकि दानियल ने बोला था कि अयूब ने बोला कि इसराइल की जो सजा है वो 7 गुना कर दी जाएगी। इन सब का कुछ मतलब है, वो समय कब कब कहाँ पूरा हो रहा है, ये सारी बातें। नामान की 7 डुबकियों का क्या मतलब है? बाइबल में कटाई का क्या मतलब है? तंबू की पढ़ाई और तंबू में जो बलिदान होते थे उनका क्या मतलब है? ठीक है, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट की के बारे में पढ़ाई, शैतान कौन है, शैतान कैसे बना, शैतान का मकसद क्या है, शैतान क्या कर रहा है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, कब कहाँ और कैसे होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी का वचन क्या बोल रहा है, और चमत्कार भविष्यवाणियाँ और दृश्य इन सब के बारे में क्या सच्चाई है, इसराइल के बारे में भविष्यवाणी। और मैं भूल गया एक चार्ट लाना, आपको चार्ट दिखाना था परमेश्वर का, युगों की योजना का चार्ट, उसका क्या मतलब है। और अंत में हम पढ़ेंगे बपतिस्मे का क्या मतलब है। आप लोगों के बपतिस्मे हुए पड़े हैं लेकिन बपतिस्मे का मतलब आपको अभी तक नहीं पता, अगर मैं पूछना शुरू कर दूँ तो नहीं पता होगा, जो वचन के मुताबिक है, ठीक है। सो इन सब के प्रश्नों के उत्तर, ये सारी बातें हम सीखेंगे धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके। तो हम पहला कदम अभी उठाएंगे क्लास नंबर एक में, क्लास नंबर 0 यहाँ पे ख़त्म होती है, क्लास नंबर 1 अभी हम शुरू करेंगे।